मार्गदर्शन।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम मार्गदर्शन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हज एकता का प्रतीक है। ज़हरा ज़ैदी और सैयद मीसम का सलाम स्वीकार करें।
इस्लामी जगत में, विशेषकर वर्तमान समय में, एकता महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इस्लामी एकता का महत्वपूर्ण दुश्मन अमेरिका के नेतृत्व में विश्व साम्राज्यवाद है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का मानना है कि इस्लामी एकता के शत्रु, जो वास्तव में शुद्ध इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लामोफोबिया फैलाने और इस्लाम धर्म की सुंदर छवि को तबाह करने के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए दीर्घावधि कार्यक्रम बनाए हैं। ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए शालीन नहीं है कि वो भी उनकी मदद करें और आपसी मतभेदों से और एक दूसरे को बुरा भला कहकर दुश्मनों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाएं। वरिष्ठ नेता इस कार्रवाई को दूरदर्शिता और राजनीति के विरुद्ध बताते हैं।
वरिष्ठ नेता का मानना है कि मुसलमानों को चाहिए कि आपस में एकजुट रहें और एक दूसरे की सहायता करें। मुस्लिम सरकारें, मुस्लिम राष्ट्र, ये सब यही काम करें। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस्लामी सरकारें मुसलमानों के बीच एकता उत्पन्न करने के लिए मुसलमानों की अपार क्षमताओं से लाभ उठा सकती हैं और एकता की मजबूती में अपनी भूमिका निभा सकती हैं।
खेद की बात यह है कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मुसलमानों के बीच एकता के संबंध में उचित नहीं है। वरिष्ठ नेता की नज़र में जो चीज़ एकता की राह में रुकावट है, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें अज्ञानता और संकीर्ण सोच है। एक दूसरे से अज्ञान में रहना और दूसरों की आस्था और विचारों की ओर से शंका में ग्रस्त रहना उन नमूनों में से है जिनसे मुसलमान एक दूसरे से दूर होते हैं। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि शिया सुन्नियों के बारे में, सुन्नी शियों के बारे में, अमूक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में शंका में ग्रस्त रहते हैं। दुश्मन भी पूरी ताकत से यही भ्रांति फैलाने के प्रयास में है। खेत के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग इसी भ्रांति का शिकार हो जाते हैं, दुश्मन की योजना की अनदेखी करते हुए दुश्मनों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं और दुश्मन उससे लाभ उठाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात मनुष्य को बात कहने पर मजबूर कर देती है और उसको दृष्टिकोण अपनाने पर विवश कर देती है। ऐसा काम करने पर मजबूर कर देती है कि दुश्मन उस बात से अपनी योजना के लिए फायदा उठाए और दोस्तों के बीच मतभेद की खाई और गहरी कर दे।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि द्वेष के कारण दो अलग अलग आस्था रखने वालों के बीच मतभेद एक स्वाभाविक बात है और ये बात शिया और सुन्नी मुसलमानों से विशेष नहीं है। आस्था का ये द्वेष शिया मुसलमानों के विभिन्न मतों में और सुन्नी मुसलमानों के विभिन्न मतों में काफ़ी समय से चला आ रहा है। इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि सुन्नी मुसलमानों में धर्मशास्त्र और उसूल के मतों में, उदाहरण स्वरूप अशायरा और मोतज़िला, उदाहरण स्वरूप हम्बलियों, शाफ़ई और हनफियों में भी पाया जाता था। इसी प्रकार शिया मुसलमानों के विभिन्न मतों में मतभेद पाए जाते थे।
वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जब ये मतभेद निचले स्तर पर आम लोगों तक पहुंचता है तो ये खतरनाक हद तक पहुंच जाता है और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने तक की नौबत आ जाती है। धर्मगुरु आपस में मिल बैठकर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, किंतु जब बात उस तक पहुंचती है जिसमें ज्ञान के हथियार नहीं होते तो वो भावनाओं, मुक्के और हथियारों का प्रयोग करता है। ये बहुत ही खतरनाक है। दुनिया में ये चीज़ हमेशा से रही है। हमेशा मोमिनीन भी और शुभ चिंतकों ने भी इसको रोकने का प्रयास किया है। धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों का भी यही प्रयास होता था कि आम लोग झगड़े में ना फंसें, लेकिन इस बीच दूसरे लोग मैदान में कूद पड़े। ये साम्राज्यवादी थे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमेशा से शिया सुन्नी मतभेद साम्राज्यवादियों से संबंधित रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी भावनाएं इसमें शामिल नहीं हैं। कुछ अज्ञानता के कारण, कुछ द्वेष के कारण, कुछ भावनाओं के कारण और कुछ संकीर्ण सोच के कारण इस मामले में उलझ गई। लेकिन जब साम्राज्यवादी इस मामले में घुसे तो उन्होंने इन हथियारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया।
मुसलमानों को इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना चाहिए कि दुश्मन हमारी छोटी सी नासमझी से लाभ उठाकर मतभेद की आग लगा देते हैं। इस आधार पर इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता मुसलमानों के बीच एकता और मुसलमानों को दूर करने वाली गांठों को खोलने को वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता समझते हैं। वरिष्ठ नेता बल देकर कहते हैं कि प्राचीन काल से ही अपने लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से साम्राज्यवादियों ने नीच घटिया राजनीति चला रखी है, किंतु आज इस्लामी चेतना की विभूति से मुस्लिम राष्ट्र साम्राज्यवादी और ज़ायोनिज्म के मोर्चे की दुश्मनी से भलीभांति अवगत हो चुके हैं और उसके मुकाबले में दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। मुसलमानों के बीच मतभेद के बीज बोने का काम तेजी से शुरू हो गया है। मक्कार दुश्मन अब मुसलमानों के बीच गृह युद्ध की आग भड़काकर उनमें प्रतिरोध और संघर्ष के अर्थ को दिग्भ्रमित करना चाहता है और ज़ायोनी शासन और साम्राज्यवादियों के पिट्ठुओं को, जो वास्तविक दुश्मन है, सुरक्षित रखना चाहता है। पश्चिमी एशिया के देशों में तकफीरी आतंकवादी गुटों और दूसरी तरह के आतंकियों को सक्रिय करना इन्हीं धूर्तपूर्ण नीतियों का भाग है। ये चेतावनी हम सबके लिए है कि मुसलमानों के बीच एकता को आज अपने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दायित्वों में सर्वोपरि करें।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता हज को एकता, भाईचारे और आपसी मेल का बेहतरीन प्रतीक बताते हैं। उनका मानना है कि हज में सभी लोगों को संयुक्त बातों पर ध्यान देना और मतभेद को दूर करने का पाठ सीखना चाहिए। वरिष्ठ नेता एकता की वास्तविकता को एकेश्वरवाद की मूल इच्छा बताते हैं और निष्ठा के साथ उपासना की छत्रछाया में एकता तक पहुंचने को संभव समझते हैं। वरिष्ठ नेता का मानना है कि जैसे ही मन में एकेश्वरवाद की आत्मा जिंदा होती है, वैसे ही दिल एक दूसरे से निकट होते हैं और महान इस्लामी राष्ट्र के तन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता की दृष्टि में हज्ज इब्राहिमी ही हज्ज मोहम्मदी है, जिसके दौरान एकेश्वरवाद और एकता की ओर बढ़ा जाता है और इसी बीच एकता के प्रतीक के रूप में काबा इस्लामी भाईचारे और एकेश्वरवाद का पाठ सिखाता है। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता हज के मौसम को स्वच्छ झरने की भांति बताते हैं, जो हाजियों को एक साथ एकेश्वरवाद और एकता जैसी वास्तविकता से अवगत कराता है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई की नज़र में मुसलमानों के लिए हज का सबसे बड़ा पाठ ये है कि मुसलमान एकता तक पहुंचने के लिए निष्ठापूर्ण ढंग से एकेश्वरवाद का दामन पकड़ लें और स्वयं को इस विषय से मजबूती से जकड़ दें।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हज आज हमको ये सिखाता है कि ये कोई व्यक्तिगत उपासना नहीं है, बल्कि मुसलमानों की समस्याओं पर ध्यान देने और ज़माने के शैतान से दूरी कभी भी हाजियों के एकेश्वरवाद और अध्यात्म की भावना के विरुद्ध नहीं है और हाजी हज के विशेष अवसर से जो उसे आत्मनिर्माण का मौका देता है, मुसलमानों की समस्याओं से निश्चेत नहीं रह सकता। ये दोनों विषय एक ही प्रक्रिया के पूरक हैं, ये कोई दो अलग अलग कार्रवाइयाँ नहीं हैं। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि स्वयं का सुधार और मुसलमानों का सुधार दो कभी न अलग होने वाले दायित्व हैं जो हज के मौसम में व्यवहारिक होते हैं।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता मुसलमानों के बीच एकता पैदा करने और इस्लाम के दुश्मनों के षड्यंत्रों को दूर करने में हज के बहुत अधिक महत्व के बारे में कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रों को शताब्दियों और वर्षों के दौरान जमीन पर पटक दिया गया, अपमानित किया गया, असहाय कर दिया गया, निराश कर दिया गया और नए संसाधनों द्वारा उनके अध्यात्म को, उनके ध्यान और एकाग्रता को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। हज समस्त समस्याओं को ठीक करता है, मुसलमानों की एकता को प्रतिष्ठित करता है, उनको शक्ति का आभास दिलाता है, आशा दिलाता है। हज इसी तरह है। हज का पहला प्रभाव मुसलमानों के भीतर है, स्वयं हमारे दिलों में है। दूसरी ओर इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हैं। दुश्मनों को कमज़ोर करता है, दुश्मनों के मनोबल को कमज़ोर करता है, इस्लाम के वैभव को दुश्मनों के सामने पेश करता है, मुसलमानों की एकता को दुश्मनों के सामने जाहिर करता है।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उन पर अल्लाह की धिक्कार हो जिन्होंने मुसलमानों की एकता को और इस्लामी जगत के महत्व को मन से दूर करने का प्रयास किया, मुसलमानों को विभिन्न वर्गों और लक्ष्यों में विभाजित किया, महान इस्लामी राष्ट्र के वैभव के मुकाबले में जातिवाद को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, राष्ट्र को एक दूसरे से अलग कर दिया, जबकि मुस्लिम राष्ट्र महत्वपूर्ण है, वैभव इस्लामी राष्ट्र से संबंधित है, ईश्वर मुसलमानों और इस्लामी राष्ट्र को अपने वैभव का पात्र बनाता है, हज मुस्लिम राष्ट्र के गठन का प्रतीक है। ये सब चीज़ें दुनिया में हज के अतिरिक्त कहाँ व्यवहारिक होती हैं। हज के सामाजिक आयामों में से एक एकता का विषय है।